मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 22 अगस्त 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए जिस विषय का मैंने चुनाव किया है, यह आज के सुबह के मेरे अपने एक छोटे से लेकिन प्यारे अनुभव पर आधारित है और मुझे लगा कि आज क्यों न मैं अपने इस अनुभव को आपके साथ शेयर करूं। और उससे भी बड़ी बात यह कि इस अनुभव के माध्यम से ही क्यों न जिंदगी के बारे में कुछ बातचीत की जाए। और आज के जिंदगी का जो पहलू हमने इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए लिया है मित्रों, उसका संबंध है बेसिकली सफलता से। हम सब कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से कोई कोर कसर भी नहीं उठा रखते और हमें उम्मीद भी होती है कि नहीं, हमने जिसके लिए काम किया है वह हमें हासिल होगा। लगता है कि बस हासिल होने वाला ही है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि जब परिणाम सामने आते हैं तो वह आशा के अनुरूप नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होता तो बहुत ही स्वाभाविक है कि हम बेहद निराश हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं और यहां तक निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, अब ये मेरे बस की बात नहीं है, हमारी किस्मत खराब है और हमें इससे अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए और किसी दूसरे काम में लग जाना चाहिए। तो मित्रों, सच पूछे तो जीवन के हमारे जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी हम विचार करते हैं या हमारे दिमाग में जो कुछ भी तथ्य आते हैं, कभी कभी तो मुझे ये लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि वो सब के सब प्रकृति से ही आए हुए हैं। जैसे आप फिजिक्स की थ्योरीज ले लीजिए, फिजिक्स की थ्योरीज क्या हो रही है, फिजिक्स के जितने भी सिद्धांत हैं वो बेसिकली ये जो प्रकृति जिस तरीके से काम करती है, उसमें जो सिद्धांत काम करते हैं, उन्हें जान लेना ही फिजिक्स में पढ़ना है और वही वैज्ञानिक कहलाते हैं। हम जानते नहीं है तब तक वो हमारे विषय से बाहर की चीज है, जैसे ही जानते हैं हम वैज्ञानिक बन जाते हैं और हम विज्ञान के विद्यार्थी बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन के बारे में भी काफी कुछ ऐसा ही है, भले हम उसे सीधे सीधे प्रकृति से न जोड़ पाएं, लेकिन वो प्रकृति से जुड़ता तो है ही। तो मित्रों, वाकया कुछ ये था कि आज सुबह सुबह जैसे ही मैं वॉक करने के लिए बाहर निकला, मैंने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल घनघोर भाग बादल छाए हुए हैं। मुझे लगा कि एक मिनट के लिए कि मुझे घूमने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं घूमने जाऊं और अचानक तेज बारिश आ जाए। और इसमें कोई संदेह मुझे नहीं लग रहा था कि बारिश होगी और खूब तेज बारिश होगी। मेरा कंसर्न केवल इस बात का था कि कहीं बीच में ना हो जाए। कोई बात नहीं, अगर भीग भी जाते तो मैंने सोचा कि भीगने का भी अपना एक आनंद, अलग आनंद है। और कभी कभी ऐसा मौसम या ऐसा अवसर मिलता है जब आप आसमान के फव्वारे से गिरने वाले जल की बूंदों से अपने आप को सरोबार करें। तो मैंने कहा चलो भीग भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, बस मुझे डर थोड़ा सा ये लगता है कि भीगने से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गला खराब हो जाए। और गला अगर खराब हो गया तो समझिए कि फिर मैं आप लोगों तक जो पहुंचूंगा भी तो वो कुछ ऐसी आवाज में पहुंचूंगा जो आप सबको नागवार गुजरेगी। तो मित्रों, चूंकि सामने ही घर के पार्क है, मैंने कहा कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा और मैं घूमने निकल गया। मुश्किल से अभी 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि मैंने देखा कि आसमान की रंगत बदलनी शुरू हुई, उसका रंग धीरे धीरे बदलने लगा। अभी तक जो बिल्कुल अंधियारे कजरारे बादल थे, घनघोर बादल थे, सघन बादल थे, धीरे 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 अब वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पार्क जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ नजर आ रहा था, धीरे धीरे साफ नजर आने लगा। और देखते ही देखते, मतलब मुझे घूमते हुए मुश्किल से 20 मिनट ही हुए होंगे कि आसमान भी क्लियर हो गया, सूरज की लाल लाल छटाएं सूरज के आने की घोषणा करती हुई मालूम पड़ी। और आकाश की ओर जब मैं सिर उठाकर देखता हूं तो लगता है कि अरे वो बादल चले कहां गए। और देखता हूं कि वो जो सघन बादल थे वो वहां से गायब हो गए हैं और वर्षा की सारी संभावनाएं धूमिल पड़ गई हैं। जबकि वर्षा का होना भोपाल जैसे शहर के लिए अभी निहायत जरूरी है, क्योंकि जितनी वर्षा होनी चाहिए उसका भी 50% भी वर्षा नहीं हो पाई है। मित्रों, मन में निराशा भी हुई, घोर निराशा हुई। सच पूछे तो बारिश होती तो मुझे खुशी ही होती, चाहे मैं भीग ही क्यों न गया होता। दोस्तों, इसके बाद फिर मैं लौट आया, मेरा वॉक पूरा हुआ, फिर अपना जो काम कार्यक्रम होते हैं वो सारे के सारे शुरू हो गए। लेकिन मैं देखता हूं कि लगभग एक डेढ़ घंटे के बाद फिर से वही अंधियारा छा गया, वही काले बादल, वही सघन बादल। मैंने कहा कि चलो इस बार तो ये बरस कर जाएंगे ही, क्योंकि अब इतने घनघोर बादल हुए हैं तो ये दोबारा मौका मिला है तो इस बार तो बारिश हो ही जाएगी। मित्रों, इस बार भी वही निराशा, फिर से वो बादल गायब हो गए और फिर से सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमकने लगा और फिर से मैं एक बार निराश हुआ। दोस्तों, ये बस एक छोटी सी घटना है और बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब हमारे अनुभव में रोज ये चीजें आती रहती हैं प्रकृति के साथ। लेकिन मेरा दिमाग तुरंत ये स्ट्राइक किया कि मैं इसके माध्यम से जीवन को किस रूप में व्याख्यायित कर सकता हूं। वह सच पूछे तो वही सोचने की प्रक्रिया में जो बातें मेरे दिमाग में आई तो मुझे लगा कि थोड़ा सा नया विषय भी होगा, हल्का फुल्का विषय भी होगा, तो चलिए मैं इसी पर आपसे आज कुछ बातें करता हूं। मित्रों, अब होता क्या है, देखिए, ये जो सघन बादल थे, ये सघन बादल बरसे क्यों नहीं? बादलों का बरस जाना ही बादलों की उपयोगिता है, उसका परिणाम उसको प्राप्त हो जाना है, लेकिन वो बरस नहीं पाए। वो क्यों नहीं बरस पाए? सघन थे वो, मतलब बादलों की रंगत देखकर मैं वर्षा का अनुमान कर लेता हूं, ये कह लीजिए कि थोड़ी सी एक सामान्य सी जानकारी मुझमें है, गांव में रहने की वजह से हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं यहां फेल हो गया, है ना। उसका कारण यह था कि जो हवा चल रही थी वह हवा इस तरीके की थी या इतनी तेज थी या उसकी दिशाएं कुछ ऐसी थी कि वह हवा उन बादलों को अपने साथ बहाकर और कहीं ले गई। यानी कि हवा बादल तो थे और वो सघन बादल भी थे और पर्याप्त बादल थे, उन बादलों को बरसना ही चाहिए था, वहां कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये जो हवा थी, हवा ने उन बादलों को तितर बितर कर दिया, या कह लीजिए कि वहां से रिप्लेस कर दिया, वहां से वो दूसरी जगह भेज दिया, स्थानांतरित कर दिया। अब हो सकता है कि वो वहां जाकर के बरसे। देखिए, अगर बादल हैं तो कहीं ना कहीं तो बरसेंगे, टुकड़े टुकड़े में बरसें, एक साथ बरस जाएं, कई कई जगह बरसें, जो भी हो बादल तो बरसेंगे, है ना, ये तो मान करके हमें चलना चाहिए। तो मित्र, मुझे ये लगा कि जो प्रकृति है वर्षा के लिए उसने सारी कोशिशें की, बादलों का जमावड़ा उसने एक जगह कर दिया, बादल इकट्ठे हो गए। अब वो बादल नहीं बरसे, उसे परिणाम नहीं मिला, तो उसका कारण रहा प्रकृति के दूसरे तत्वों का हस्तक्षेप। और यहां हम किसे हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं? हवा को। चाहे आप हवा की दिशा कह लीजिए या हवा की गति कह लीजिए या इन दोनों को कह लीजिए, ये इतनी प्रबल थी कि उसने जो बादलों के जमावड़े की जो सघनता थी, या कह लीजिए बादलों के जमावड़े की जो मेहनत थी, कह लीजिए हम सफलता के संदर्भ में मेहनत की बात करते हैं, उसको परिणाम में तब्दील होने नहीं दिया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हम चाहे कितने भी प्रयास क्यों न करें और हमें सफलता की आशा भी चाहे कितनी भी क्यों न हो, लेकिन हो सकता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे पक्ष में न हो, हमारे विपरीत हो, और जब बाहरी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाएंगी तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि हमारी पूरी कोशिश के बावजूद हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, राइट? और सफलता का मिल जाना ही फल की प्राप्ति है। तो इसे मित्रों आप सीधे सीधे गीता में जो कृष्ण ने उपदेश दिया है उससे जोड़कर देख सकते हैं। गीता में कृष्ण ने यही कहा कि आप कर्म कीजिए। क्यों कर्म कीजिए? इसलिए क्योंकि इसी पर आपका अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म पर ही आपका अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तो कर्म उसने किए, सघन बादल आ गए, लेकिन अब ये जो वायु है, वायु की गति, वायु की दिशा, इस पर तो कर्म करने वाले का अधिकार नहीं है ना। जो बाहरी परिस्थितियां हैं उस पर तो आपका और मेरा कोई अधिकार नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं है। कुछ सीमा तक ठीक है, हम अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान लगा करके हम उस हिसाब से व्यवस्था भी कर लेते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि अनुमान की चीज 100% सही ही हो। कुछ प्रतिशत सही हो सकते हैं, ज्यादा प्रतिशत सही हो सकते हैं, और जितना अनुमान सही होगा उसी प्रतिशत में फिर हमें उसके परिणाम भी मिल सकते हैं, ज्यादा या अधिक। हमने बहुत कोशिश की, हमारे प्रयास 100% सही रहे, लेकिन हो सकता है कि हमें 50% ही परिणाम मिले। तो ये जो बाहरी परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि इसकी प्रबलता को हमें स्वीकार करना चाहिए। और सच पूछे तो भारतीय दर्शन ने इस बाहरी परिस्थिति को ही एक तरीके से भाग्य कह दिया है, डेस्टिनी कह दिया है, क्योंकि इस पर कोई नियंत्रण। देखिए भाग्य क्या है, भाग्य तो ऐसे ही है ना जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, एक अदृश्य चीज है जो हम कहते हैं कि पूर्व निर्धारित है, ईश्वर ने लिख दिया है और जो लिख दिया है वही होगा। तो जब हम ये बात कहते हैं कि जो लिख दिया है वही होगा, तो मैं समझता हूं कि वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। अगर भाग्य को हमें लेना भी है तो मैं इस रूप में लेना पसंद करता हूं कि यह एक संयोग है, हमने अनुमान नहीं लगाया था किन्हीं चीजों का और वो चीजें हो गई हैं, अब वो दिखाई दे रही हैं, तो एक संयोग है ना कि अभी घटित हो गया। याद रखिए कि कभी कभी हमारे पक्ष में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो भाग्य है या इस तरह के जो संयोग हैं, जो परिस्थितियां हैं, ये हमारे विपरीत ही होती हैं, बहुत बार वो हमारे पक्ष में भी होती हैं, क्योंकि जो बादल सघन नहीं होते वो भी बरस जाते हैं, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वर्षा होगी और वर्षा हो जाती है। तो वहां जो बाहरी परिस्थितियां बनी वह हमारे फेवर में बनी ना, लेकिन होता क्या है कि जो चीज हमारे फेवर में होती है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो चीजें हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं वो चीजें हमें बहुत गहरे रूप से झकझोरती हैं और उन्हीं पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस बारे में बहुत जरूरी है कि हम सब एक संतुलन का भाव रखें और अपने जीवन के लिए जो प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, वहां से बहुत सीखें। प्रकृति से हम बहुत सीख सकते हैं। देखिए प्रकृति तो इतनी सर्वशक्तिमान है, इतनी पावरफुल है, जब वहां ही कोई चीज एकदम निश्चित नहीं है तो हम सब तो उसके सामने तिनके की भी औकात नहीं रखते, तो हमारी क्या शक्तिशालीता है, हम कोई बहुत शक्तिशाली नहीं है, हम सब एक छोटे छोटे प्यादे हैं इस पूरे के पूरे प्रकृति के शतरंज के, बहुत ही छोटे छोटे मोहरे हैं, इसी में कोई राजा है कोई वजीर है, लेकिन शतरंज के मोहरे में आप देखिए कि हर कोई कभी न कभी पिटता ही है, तो हर कोई पिट जाता है, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं बाजी, कुछ लोग हार जाते हैं, और जो इस बार बाजी जीतते हैं वो अगली बार हार जाते हैं। और मुझे लगता है मित्रों की प्रकृति में बस यही सब कुछ चलता रहता है, और यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत ताकत आती है, बहुत भरोसा आता है, आत्मविश्वास आता है, फिर हम गिरकर भी नहीं गिरते, गिरते हैं गिरना ही होता है, लेकिन उठने के लिए गिरते हैं, क्योंकि गिरा तो इसलिए जाता है कि व्यक्ति उठे, लेटने के लिए नहीं गिरा जाता। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में यही कुछ बातें मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी सुबह के अपने अनुभव को आधार बना करके। तो अब वक्त हो चला है, इसी के साथ ही मैं अब आप सबसे विदा चाहूंगा, नमस्कार।